संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नए एसडीजी एडवोकेट के रूप में नियुक्त होने पे आपको बहुत बहुत बधाई। इस नई भूमिका के आपके लिए क्या मायने हैं?
मैं इसको एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी और जवाबदेही के रूप में लेता हूँ, खासकर तब जब दुनिया में चुनौतियाँ बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, और सारे के सारे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो खतरे में पड़े हैं। तो हर किसी की जिम्मेवारी है पूरी दुनिया में, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मुझ पर ये भरोसा जताया है तो मैं इस जिम्मेवारी को और ताकत के साथ निभाऊंगा।
आपकी नियुक्ति एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई है जब दुनिया भर में बाल श्रम में काफ़ी वृद्धि हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
लेकिन मुझे इस पर नाराज़गी है कि सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा के पहले 4 सालों में बाल मजदूरों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ से 16 करोड़ के लगभग हो गई, यानी कि हर रोज 5 से 11 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को, 10,000 बच्चों को बाल श्रम में धकेला गया, गुलामी में, वेश्यावृत्ति में और तरह तरह के शोषण में। यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? इसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। यहाँ पर लगता है कि एक तरफ तो हम सब ने मिलकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं, मैं भी उस दिन शामिल था जब सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा हुई, तो मैं ये आशा करता था कि अब सब जिम्मेवारी उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हो रहा।
बाल श्रम के खिलाफ आपका ये जो सफ़र है, आपकी कहानी शुरू कैसे हुई? आपने इसके खिलाफ कौन सा वो क्षण था जब आपने कहा मुझे इसके खिलाफ लड़ना है और मैं इसमें आगे कुछ करूँगा, और किस तरह की चुनौतियाँ सामने आई, और कुछ ऐसे अगर उदाहरण दे सके हमें जिसमें आपके इंटरवेंशन से कुछ बड़ा हुआ और कुछ बड़ा बदलाव सामने आया?
इसकी शुरुआत तो बिल्कुल मेरे बचपन से हो गई थी। इसको कह सकते हैं कि पहली चिंगारी मेरे मन में 5 साल की उम्र में जागी जब मैं पहली बार अपने स्कूल गया। मुझे स्कूल में घुसते वक्त दरवाजे पर एक मोची बच्चा जूतों पे पॉलिश करते हुए या जूते सुधारते हुए दिखा। उसकी उम्र भी मेरे बराबर थी, करीब करीब 6 साल का होगा। तो मुझे बहुत एक सदमा लगा और कुछ असहज महसूस किया मैंने। मैंने अंदर अपने शिक्षक से जीवन में पहला सवाल पूछा कि सर ये एक बच्चा बाहर बैठ के काम कर रहा है और हम सब अंदर हैं। मेरे टीचर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, गरीबों के बच्चे उनकी माँ बाप की मदद करते हैं। यही बात मेरे परिवार वालों ने और दोस्तों ने भी मुझे समझाने की कोशिश की, तो मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया। मैं भी बहुत छोटा था, जात पात भी मुझे नहीं मालूम थी और ये गरीबी का इतना विभत्स स्वरूप भी मुझे नहीं मालूम था। लेकिन उस घटना ने मुझे एक नए तरीके से सोचने की आंखें दी, समझने की आंखें दी। मैंने देखा कि और भी बच्चे इसी तरह मजदूरी कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, सड़कों पर ढाबों पर काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में बहुत सवाल उठने लगे जिनका जवाब मैं खुद ढूंढने की कोशिश करता रहा। बाद में 1980 में मैंने फैसला किया कि अब मैं पूरी तरीके से इसी पर काम करूँगा। लेकिन बाल मजदूर के खिलाफ कोई काम ऐसा हो नहीं रहा था, कोई संगठन भी काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि ILO का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो कई साल बाद आया, 10-12 साल बाद आया। संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिकार घोषणा पत्र भी 10 साल बाद आया, 1989-90 में, और मैं बात कर रहा हूँ 1980 की। तो बाल अधिकार जैसे शब्दों की कोई चर्चा नहीं होती थी, तो बहुत बहुत मुश्किल दौर था। तो मैं एक पत्रिका निकाल के ऐसे ही बच्चों और महिलाओं और समाज के ऐसे तबकों के बारे में लिखने लगा। फिर अचानक एक दिन एक सज्जन ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। वासल ने बताया कि शादी के तुरंत बाद उनकी पत्नी, वो और कुछ और परिवार ईंट के भट्टों पर काम करने के लिए ले जाए गए थे। उनको इसी तरह काम करते हुए, गुलामी करते हुए 17 साल हो गए और कोई मजदूरी कुछ नहीं मिला और आज़ादी का तो मतलब ही नहीं। सब बच्चे वहीं पैदा हो गए, वहीं बड़े हो गए। उनमें ही ये 15 साल की लड़की साबो उसका नाम था, वो थी। तो उसने बताया कि हुजूर मेरी मदद कीजिए, मेरी बात छाप दीजिए अपनी पत्रिका में, क्योंकि मेरी बेटी किसी भी वक्त वेश्यालय में बेच दी जाएगी। लेकिन मैंने कुछ दोस्तों को तैयार किया, हम लोग वहाँ पहुँचे तो मर तो नहीं पाए, लेकिन हमारी पिटाई हुई, हमें भगा दिया गया, वासल खान पकड़ लिए गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम दिल्ली आके एक वकील साहब से मिले जिनकी मदद से हाईकोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस की याचिका दायर की, और कुछ दिनों के अंदर ही हम साबो सहित और पूरे परिवार के सहित 36 बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों को छुड़ाने में सफल हुए और वहीं से हमको एक नई दिशा मिल गई और हम आगे बढ़ते चले गए। अब जो खतरा पहले दिन था वो खतरा अब तक बना हुआ है। हमारे ऊपर कई बार हमले हुए, मेरा एक पैर टूटा हुआ है, उसमें चोटें लगी हैं, मेरे दाहिने कंधे पर हमला हुआ और वो भी टूटा हुआ है, मेरे सिर में कई घाव हैं, पीठ मेरी रिप्स जो हैं वो उनमें बहुत घाव हैं, वो मेरे 3 साथी तो शहीद हो चुके हैं। ये एक लंबी लड़ाई है उस सामाजिक मानसिकता के खिलाफ जो भेदभाव, शोषण, गुलामी को जारी रखती है। और केवल बच्चों को छुड़ाने का हमारा काम नहीं रहा, हमको लगा कि शिक्षा हमारे देश में मौलिक अधिकार नहीं थी, तो हमने बड़ी बड़ी यात्राएं करके अलग अलग पार्टियों के संसद सदस्यों को समझा बुझाकर इकट्ठा करके और समाज में जागृति पैदा करके संविधान को बदलने की मांग उठाई और अंत में 2001 में भारत का संविधान बदला गया और शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। ये हम लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया जो पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में साथ साथ चलाया गया कि गलीचों में जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, और गलीचे ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के लोग खरीदते थे, वो उनमें बाल मजदूरी ख़त्म होनी चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब दुनिया में ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक जिम्मेवार उपभोक्तावाद की बातें नहीं होती थी, उस वक्त हमने ये सफल आंदोलन चलाया और दक्षिण एशिया में बाल मजदूरों की संख्या इस इंडस्ट्री में, कारपेट इंडस्ट्री में, 10 लाख से घटकर मुश्किल से 2 लाख तक रह गई है।
टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने में अब 10 साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में भारत के सामने और दुनिया के सामने आप किस तरह की प्रमुख चुनौतियां देखते हैं?
इस समय सबसे बड़ी चुनौती है धन के अभाव की चुनौती, आर्थिकी के अभाव की चुनौती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभाव सिर्फ हमारे स्वार्थ, हमारी प्राथमिकताओं, हमारे संकुचित दिल दिमाग की वजह से है, अन्यथा मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि दुनिया इतनी गरीब है कि जो सबसे कमज़ोर तबके हैं, सबसे वंचित तबके हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, उनको ना बचा सके। ये चुनौती एक बनावटी चुनौती है, इसको बदलने की ज़रूरत है। हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने इस नए रोल में, नई जिम्मेवारी में भी ये कोशिश करूँगा कि अमीर देश अपना जो अनुदान है गरीब देशों के लिए दी जाने वाला, उसको बढ़ाएं। पैंडेमिक के नाम से ये कटौती नहीं होनी चाहिए, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक इस तरह की दुनिया में जीते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है और हमने जानबूझ के उसे बनाया है क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चल सकता, लेकिन हम जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हमका मतलब है खासकर अमीर राष्ट्र, तो ये एक दूसरी चुनौती है कि हम एक बहुत सशक्त संयुक्त राष्ट्र संघ, एक बहुत ही ज़्यादा सक्रिय संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की कोशिश करें। पारंपरिक तरीके से, पुराने तौर तरीकों से ये सब नहीं चलेगा। मुझे बहुत दुख हुआ और शायद बहुत गुस्सा आया ये देखकर कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे लगता है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने, शासनाध्यक्ष ने इन चुनौतियों के बारे में बात नहीं की जो हमारी दुनिया के बच्चों के सामने आई हैं। गुलामी में धकेले जाने की चुनौती, वेश्यावृत्ति में धकेले जाने की चुनौती, बाल मजदूरी में धकेले जाने की चुनौती, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, किसी ने बात नहीं की। ये साल खुद यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी साल के रूप में, बाल श्रम मुक्ति के रूप में घोषित किया है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कब तक ये चलेगा कि नेता लोग वहाँ जाएंगे और इस मंच का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए करेंगे, अपने कूटनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने व्यावसायिक फायदे बढ़ाने के लिए? ये कब तक चलेगा? ये संस्कृति बदलनी होगी। ये मंच मानवता के पुनरुद्धार का, पुनर्निर्माण का, पुनर्जीवित करने का मंच है और ये नैतिकता का मंच है। इसमें हम अपने बारे में कहानियां सुनाने के बजाय या दूसरों को उपदेश देने के बजाय जिम्मेवारी लें कि मेरी ये जिम्मेवारी है दुनिया के अन्य देशों के लिए। वो तो कहीं देखने को मिलता नहीं। एक मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ, जो मैंने अभी 2-4 दिन पहले कहा भी, कि 52 अरब डॉलर से हम जो गरीब देश हैं, जिनको लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है, उन देशों के प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक गर्भवती महिला को बचा सकते हैं इन परिस्थितियों से, और वो संभव है सामाजिक सुरक्षा के जरिए। और ये पैसा कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। जिस दुनिया में 2,755 अरबपति हों, खरबपति भी हों उनमें से ज़्यादातर, तो वहाँ पैसे की कमी नहीं है, तो क्यों ना हम उनके ऊपर टैक्स लगाएं। जो टैक्स न्याय है, टैक्स जस्टिस है, उसको बढ़ावा दिया जाए। हर देश की सरकार हिम्मत करके ये करे तो बहुत संभव है कि हम ये पैसा जमा कर पाएंगे।
तो भविष्य की क्या योजनाएं हैं अब SDG एडवोकेट के रूप में, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी?
कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं और कई दुनिया के जो बड़े नैतिक नेतृत्वकारी हैं, नैतिक हस्तियां हैं, उन सबको मिलाकर एक मंच बनाए हुए हैं, लॉरियर्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन। उसके माध्यम से हम बच्चों के मुद्दे को और ज़्यादा प्राथमिकता में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना जितना हम 2025 और फिर 2030 के नज़दीक पहुंच रहे हैं, उतनी ज़्यादा व्यग्रता, उतनी ज़्यादा इम्पेशंस हमारे अंदर होनी चाहिए, सभी के अंदर होनी चाहिए। तो वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें बच्चों के मुद्दों को प्राथमिकताएँ दें। फाइनेंस के मामले में भी हम अमीर देशों की सरकारों से G7 और G20 के साथ संपर्क में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि प्राथमिकता के तौर पर जो सबसे वंचित बच्चे हैं उनके मामले में कोई अनुदान में कटौती न की जाए, बल्कि उसे बढ़ाया जाए, जिससे कि एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। तो इन दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा अभियान है अभी, वो है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। आइडिया उसके पीछे ये है कि दुनिया में 10 करोड़ के लगभग बच्चे अपने बचपन से वंचित हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ कम से कम 10 करोड़ नौजवान नवयुवतियाँ स्कूलों कॉलेजों के अंदर, मोहल्लों में, शहरों में ऐसे हैं जो समाज के लिए कुछ बेहतरी का काम करना चाहते हैं। अगर किसी पर पूरा भरोसा किया जा सकता है तो वो युवा हैं, क्योंकि अभी उनके मन मस्तिष्क उतने प्रदूषित नहीं हैं जितना वयस्क होने के साथ साथ हम लोगों के हो जाते हैं। उनके अंदर जो जज्बा है, उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनके अपने जो सपने हैं, उनमें बहुत शक्ति है, भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि युवाओं की आवाज़ ही सबसे सच्ची और सबसे सशक्त, सबसे ईमानदार आवाज़ है, जो हर क्षेत्र में उठनी चाहिए। हम अपने युवाओं को, राजनेताओं की भी बहुत जिम्मेवारी है, धर्मगुरुओं की जिम्मेवारी है, समाज के ठेकेदारों की जिम्मेवारी है कि बच्चों को आसमान छूने की आज़ादी दें, नौजवानों को सपने देखने की आज़ादी दें, उनके सपनों को जात पात में, सांप्रदायिकता में, हिंदू मुसलमान ईसाई वगैरह के भेदभाव में कैद ना करें, मेहरबानी करके उन्हें खुला छोड़ दें, तो वो एक बढ़िया दुनिया हमारे लिए बना के दे सकते हैं।